23 अगस्त 2017 बुधवार, चाय पे खबर में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम अनंत है और रोज सुबह की तरह द क्विंट पे सारी काम की खबरें ढूंढकर आपके लिए मैं लेके आता हूँ। और जितना समय आप एक कप चाय पीने में लगाते हैं, उतने समय में आपको एकदम अप टू डेट कर देता हूँ, ये अपना वादा है। देखिए, कल की शुरुआत ही एक ऐतिहासिक फैसले से हुई थी और वो खबर सबसे ऊपर है। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि अब से भारत में ट्रिपल तलाक एकदम खत्म, गैर कानूनी। इस मामले पर 5 जजों की संवैधानिक पीठ में से 3 जजों ने ट्रिपल तलाक को असंवैधानिक बताया, अनकॉन्स्टिट्यूशनल, और कहा कि अनुच्छेद 14 मतलब कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 14 समानता का अधिकार देता है। और बात भी सही है, महिला हो या पुरुष, कानून के लिए दोनों के अधिकार एक समान है। अच्छा, 5 में से 3 जजों ने एक जैसी राय दी और ट्रिपल तलाक को असंवैधानिक बताया, और चीफ जस्टिस खेहर और जस्टिस नाजिर की राय वो इन तीनों से अलग थी। मामला 3-2 से असंवैधानिक घोषित कर दिया गया। और इतना ही नहीं, कोर्ट ने मुस्लिम देशों में ट्रिपल तलाक पर लगे बैन का जिक्र किया और पूछा कि भारत इससे आजाद क्यों नहीं हो सकता। बात भी एकदम सही है, सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का सभी राजनीतिक पार्टियों ने स्वागत किया है और कुछ ने तो अपने आप को भी बधाई दी दी। बहुत बढ़िया, अच्छा है। लोग कहते हैं कि अपने आप को बधाई देने से इंसान के अंदर का जो उत्साह है वो बढ़ जाता है, लेकिन हर जगह उत्साह का नतीजा अच्छा हो ये जरूरी नहीं है। आपको याद होगा, कल की चाय की खबर में मैंने आपको तमिलनाडु के पॉलिटिक्स के बारे में बताया था कि AIADMK के 2 झगड़ते गुटों ने अपना अपना फायदा देख के हाथ मिला लिया है और पार्टी की मुखिया शशिकला को बाहर निकालने का प्लान बना लिया है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट है, अगले ही दिन जेल में बैठी AIADMK की महासचिव शशिकला और उनके भतीजे दिनाकरन, उनके समर्थन वाले 19 विधायकों ने पलनीस्वामी सरकार से खुद को अलग कर लिया। इस तीसरे गुट ने गवर्नर सी विद्यासागर राव से मिलकर अपना समर्थन वापस ले लिया है। और अगर दिनाकरन दावा पेश करते हैं तो तमिलनाडु में एक बार फिर से फ्लोर टेस्ट की स्थिति पैदा हो सकती है। अब सवाल ये उठता है कि अगर तमिलनाडु में पूरे टाइम नेता समर्थन, फ्लोर टेस्ट, हाथ मिलाना, हाथ तोड़ना, इसमें भिड़े रहेंगे तो जिस काम के लिए इन सभी को चुन के भेजा गया था, देश और जनता की सेवा करने, वो काम कब करेंगे। पता लगा पूरे 5 साल इसी गुटबाजी में बीत गई और जनता को उनके वोट के बदले सिर्फ उंगली पे वो काला निशान से आई वाला है वही मिला। उम्मीद करता हूँ कि ऐसा ना हो। अब जरा तमिलनाडु से बिहार में बाढ़ से डूबे इलाकों की तरफ ध्यान करते हैं। भारी बारिश के चलते आई बाढ़ से प्रभावित इलाकों का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26 अगस्त को हवाई सर्वेक्षण करेंगे। अब हुआ ऐसे कि नेपाल और बिहार में लगातार बारिश हुई, उस चक्कर में बिहार में काफी जोर से बाढ़ आई और सरकारी तौर पे मरने वालों की संख्या अब बढ़कर 341 हो गई है। बाढ़ से 18 जिलों की 1,46,19,000 की आबादी वो बुरी तरह से प्रभावित हुई है। अब बात ये समझ में नहीं आती कि प्रशासन को मालूम है, सबको मालूम है कि ये बाढ़ हर साल आती है और आती रहेगी, तो हर साल के बाढ़ में ऐसी इमरजेंसी वाली हालत क्यों बन जाती भाई? क्या कोई ऐसे कदम नहीं है जिससे हर साल की बाढ़ का प्रभाव थोड़ा कम पड़ जाए, लोगों की जान बच जाए, ऐसा कुछ है नहीं क्या? अब जरा बिहार से और पूरब की ओर चलते हैं, भूटान की जमीन डोकलम की तरफ। चाइना डोकलम में जबरदस्ती रोड बनाने जून के महीने में पहुंचा था, ये आपको मालूम है, लेकिन सामने रास्ता रोकने पहुंच गई थी हमारी भारतीय सेना। और ये मामला जून से लेकर अब तक वैसा ही है, दोनों तरफ से कोई हिलने को तैयार नहीं है। और अब सुनिए इस मामले में लेटेस्ट खबर कौन सी है। आपको याद होगा कल गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने डोकलम विवाद पे सुलह की बात की थी। अब उस बात के ठीक एक दिन बाद चीन ने भारत के साथ रिश्ते में सुधार की पेशकश को एकदम खारिज कर दिया है। चीन ने मंगलवार को कहा कि अगर उसके सैनिक भारत में घुसे तो भारत में पूरी तरह से उथल पुथल मच जाएगी और रोड ना बनने देना भारत की शातिराना चाल है। क्या बात है, हम इतने शातिर भी हो गए हैं। अब देखिए, मेरा तो हमेशा से ये कहना है कि जिस देश की जमीन है उसकी बात सुन लो, भूटान की बात सुन लो, और जल्दी सुन लो, क्योंकि एक आध महीने में वहाँ पे ठंड शुरू हो जाएगी, इंसान जमने लगेंगे और तब एक दूसरे की बात मफलर के बीच में से और समझ नहीं आएगी। अच्छा, अब जरा खेल कूद की बात कर लेते हैं। चूंकि क्रिकेट में अपनी हालत ठीक हो गई है, बहुत सारे मैचेस, टेस्ट मैचेस हमने जीत लिए हैं, दूसरे खेलों की ओर थोड़ा ध्यान देते हैं। अभी फ्लेवर है बैडमिंटन का। भारत की स्टार बैडमिंटन प्लेयर पीवी सिंधु ने वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप में अपने सफर का शानदार आगाज किया है। पीवी सिंधु ने कोरिया की खिलाड़ी किम हो मिन को 21-16 और 21-14 से हराकर टूर्नामेंट के तीसरे दौर में एंट्री कर ली है। पहले दौर में सिंधु को बाय मिला था, ये हाथ वाला बाय नहीं है, इसका मतलब ये होता है कि पीवी सिंधु के खिलाफ कोई प्रतियोगी नहीं था। वही मेन सिंगल्स में अजय जयराम और साई प्रणीत ने भी अपने अपने मुकाबले जीतकर दूसरे राउंड में जगह बना ली है। बहुत बढ़िया, अपने सभी प्लेयर्स को ऑल द बेस्ट। और अगर ये सब अपना अगला मैच जीत गए तो मैं आपके लिए एक बहुत स्पेशल चीज लेके आऊंगा, बैडमिंटन के लिए संस्कृत का एक श्लोक बताऊंगा। ऐसा है, बताऊंगा, लेकिन अभी नहीं, अगला राउंड जीतने के बाद। अब आज के लिए बस इतनी खबरें थी मेरे पास, कल फिर से चाय पे खबर लेके आऊंगा द क्विंट पे। मैं हूं अनंत और तब तक के लिए बाय बाय।